तुमसे कितनी प्रीत है, तू ही साथ संगीत है।
ओम शांति। आज हम सभी बाबा की अव्यक्त मुरली के आधार से अपने भाग्य को अच्छी तरह से देख रहे हैं। कितना बाबा ने हम सबके भाग्य का वर्णन किया, बाबा ने विशेष अंडरलाइन किया कि बच्चे अपनी कमजोरियों का गायन नहीं करो, अपने भाग्य का गायन करो। वाह बाबा, वाह मेरा पार्ट और वाह ड्रामा। तो आप सभी ने जो आज की सभा में विशेष कर्नाटक के सेवाधारी उपस्थित हैं, आप सभी ने अपने अपने भाग्य की महिमा गाई। आते ही बाबा ने आप सबको विश्व सेवाधारी का टाइटल दिया। सेवाधारी तो हैं, जो बाबा की यज्ञ में सेवा मिलेगी वो सभी प्यार से करेंगे, लेकिन आज जिस तरह से बाबा ने हम सभी को विश्व सेवाधारी कह करके संबोधित किया, कितनी सारी विशेषताएं एक एक बच्चे की वर्णन की, सेवा के साधन भी बताए, सेवाधारी के लक्षण भी बताए। बाबा की जब ऐसी मुरली हम सुनते हैं तो उस पर विशेष अटेंशन जाता है कि क्या मैं सदा निरंतर सेवाधारी हूँ या केवल दो चार घंटे का सेवाधारी हूँ। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म में सेवा समाई हुई है। तो मैं समझता हूँ आप सबका ध्यान जरूर गया होगा कि बाबा एक और हम सबको निरंतर योगी बनाना चाहते हैं और निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी। आज बाबा ने वाचा सेवा को विश्व सेवा में गिनती नहीं किया, हम सबको अभ्यास है वाचा सेवा का। हर एक ब्राह्मण आत्माएं वाचा सेवा में बहुत प्रवीण हैं, बहुत अच्छी तरह से किसी को भी ज्ञान सुना करके बाबा का बना देती हैं। लेकिन बाबा ने आज बहुत सूक्ष्म सेवाओं पर ध्यान खिंचवाया। हमारी स्मृति, हमारी वृत्तियां, हमारी दृष्टि और फिर हमारे कर्म, ये चार साधन बाबा ने हम सबको सेवा के लिए बताए। कैसे एक बाबा की स्मृति में रहें, समर्थ स्वरूप में रहें और हमारी स्मृति से अन्य आत्माओं को समर्थि प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो, फिर हमारी वृत्तियां कैसी हों जो एक पवित्र शुद्ध शक्तिशाली वातावरण वायुमंडल बन जाए, और हमारी दृष्टि से स्वयं का और बाबा का साक्षात्कार होने लगे, और जो कोई कर्म हम कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उन कर्मों से लोगों को प्रेरणाएं प्राप्त हों, हिम्मत मिले, सीखने को मिले। तो हम सबको बाबा ने इस प्रकार से विश्व सेवाधारी का टाइटल दिया। हमारा संबंध, हमारे संकल्प, हमारी स्थिति किस प्रकार की हो, बड़ा सुंदर टाइटल था, ध्यान गया होगा। उस खान से तो एक प्रकार की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार की खान होगी उस खान से वही चीज मिलेगी, लेकिन बाबा का एक एक बच्चा विचित्र खान है। इस एक खान से सब कुछ मिल सकता है, ईश्वरीय स्नेह में मिल सकता है, सुख भी मिल सकता है, शक्ति भी मिल सकती है। जिस आत्मा को जिस चीज की आवश्यकता है, बाबा के बच्चे के पास वो सब कुछ है। इतना दिया है बाबा ने हम सबको, बाबा को ये हम बच्चों में उम्मीद है। भले हम कहें बाबा ने आज कहा, जो बिल्कुल ना उम्मीद थे, जो बिल्कुल भोले थे, गरीब थे, उनको बाबा ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन हम सब में बाबा की कितनी उम्मीदें हैं, किस रूप में, किस नजर से बाबा हम सबको देखते हैं। तो आज मेरा ध्यान कुछ बातों पर गया, विशेष अंडरलाइन, क्योंकि अभी बाबा की सीजन का ये पहला टर्न है भारतवासियों के लिए। विदेश के बच्चों से तो बाबा मिले 24 अक्टूबर को, अभी पहला टर्न जिसमें आप सभी पहुंचे हैं। और बाबा ने पिछले सीजन में लास्ट टर्न के अंदर एक बात अंडरलाइन कराई थी कि बाबा अगली सीजन में दिल पसंद सभा से मिलने के लिए आएंगे। तो क्या आप सभी जो बाबा के बच्चे इस सभा में बैठे हैं, समझते हैं कि हम बाबा के दिल पसंद बच्चे हैं? क्या समझते हैं? सभी हैं, सभी इस सभा से बाबा मिलेगा तो आपको देख करके बाबा को क्या होगा कि मेरे सब बच्चे दिल पसंद हैं, जो बाबा की दिल में है वही इन बच्चों के दिल में है, जैसा बाबा चाहता है वैसा ये कर रहे हैं। तो पांच छह बातें मैं आपके ध्यान पर लाता हूं, क्योंकि जब पिछली सीजन चल रही थी कई बातों पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया था, और अब फिर से वो सीजन प्रारंभ हो रही है तो हम सब उसका अवलोकन करें। कहते हैं पुनरावलोकन कीजिए कि हम सचमुच जो बाबा ने हमसे उम्मीदें रखी थी क्या वो हमने पूरी की हैं, हमारी ऐसी ऊंची श्रेष्ठ स्थिति जैसी बाबा बनाना चाहते हैं ऐसी बनी है, या अभी तक भी ऐसी कोई बातें हैं जिन पर बाबा को फिर से ध्यान खिंचवाना पड़ेगा। वैसे बाबा तो अथक है, थकता नहीं है, बच्चों को बार बार हमारे पुरुषार्थ पर जो कमियां रह जाती हैं उस पर ध्यान खिंचवा देता है। ये नहीं कहता बच्चे तुमने अभी तक किया ही नहीं इसलिए बार बार क्यों कहूं। शायद लौकिक माँ बाप अगर बच्चों को दो चार बार कोई बात कहें और वो न करे तो थक करके कहेंगे छोड़ो इसको, इसकी तकदीर पर छोड़ दो। लेकिन हमारे माँ बाप हमसे थके नहीं हैं, बार बार कितने वर्षों से कितनी सारी बातों पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो पहला ध्यान कुछ साल से, तीन चार साल से विशेष बाबा का हम सबके ऊपर है कि बच्चों का मन ऐसा हो जो एक एक मेरा बच्चा मन जीत जगत जीत बन जाए। पहले बाबा की मुरलियों में आता था माया जीत जगत जीत, लेकिन समय अनुसार बाबा ने इस बात को चेंज किया क्योंकि मन में भी माया के ही विकल्प आते हैं, तूफान आते हैं। इसलिए मन पर अगर जीत हो गई, व्यर्थ संकल्पों पर जीत हो गई, तो माया अपने आप हार जाएगी, उस पर जीत हो जाएगी। इसलिए सभी पहले अपने मन की गति को देखें कि मन की चंचलता समाप्त हुई है। मन के अंदर जो उत्तेजनाएं हैं, जोश हैं, आवेग हैं, कभी कभी वो चेहरे से वाणी से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो कुछ अंदर होता है उसका दर्पण या उसका प्रत्यक्ष स्वरूप चेहरा है, पता चलता है इसके चेहरे में अंदर क्या है जो चेहरे से दिखाई देता है या बोल से भी निकल जाता है। तो हर एक अपने मन की आंतरिक स्टेज को चेक करे कि सचमुच मेरा मन मेरा कहना मानता है। अभी मैं आधा घंटा योग कर रहा था, आप सभी भी यहाँ योग अभ्यास कर रहे थे, सदा मन के अंदर मनन ही चलता रहा या कुछ समय मन बिल्कुल स्थिर और एकाग्र लगन में मगन हो गया, चेक किया? कई बार संकल्प चलते रहते हैं, चिंतन चलता ही रहता है, अच्छे चिंतन ही चलते हैं, भले बुरे नहीं चलेंगे। संगठन में हम बैठे हैं, बाबा की बातें याद आएंगी, अपना भाग याद आएगा, बाबा की मुरलियां याद आएंगी, बाबा का स्वरूप याद आएगा, अपने कर्तव्य याद आएंगे, चिंतन चलता रहता है। लेकिन जो बाबा हम सबको कहते हैं योग की वास्तविक स्टेज, जिसमें मन और बुद्धि स्थिर हो जाए, आत्मा लगन में मगन हो जाए, सब संकल्प शांत हो जाएं, एक बाबा में जैसे प्यार के अंदर आत्मा खो जाए, जो आज बाबा ने एक विधि बताई मुरली के अंदर, जहां सच्ची लगन है और सच्ची लगन से जिसने एक बाबा पर भरोसा रखा है, एक बल और एक भरोसा, उसके आगे कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकते। असंभव भी संभव हो जाएगा, और ऐसा संभव होगा जैसे कोई मक्खन से बाल निकाल लिया जाए, इतना सहज सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। बाबा के ऐसे वरदानी बोल हम सब सुनते हैं, जरूर सबका ध्यान जाता होगा, कितना एक छोटे से वरदान के अंदर कितनी गहरी बात बाबा ने कही है। वैसे कोई भी विघ्न जब आते हैं तो हम सब अनुभवी हैं कि कितना वो हिला करके चले जाते हैं, कितना मन की स्थिति डामाडोल हो जाती है, कई बार तो कईयों की नींद ही फिट जाती है। वो एकदम परेशान करने वाले संकल्प आने लगते हैं, अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, हल निकलता हल दिखाई नहीं देता। भले हम सबने अपने ही कोई कमजोर संकल्पों से, कोई ऐसी आदतों के आधार से उन विघ्नों को आवाहन किया है, लेकिन जब विघ्न आ जाते हैं तो बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं और आत्मा को एकदम झकझोर देते हैं, हिला देते हैं, फिर योग नहीं लगता है, वो आंतरिक खुशी का अनुभव नहीं होता है, मन भटकता रहता है, चेहरा पर उदासी दिखाई देती है, मूंझा हुआ उलझा हुआ, उसकी निशानी अगर आप सब देखेंगे तो जब विघ्नों के कोई वशीभूत आत्मा हो जाती है और बार बार कोई के आगे वो विघ्न आते हैं तो उसकी हालत क्या होती है, उसके चेहरे का रौनक क्या होती है, खुशी गायब हो जाती है, चिंतन चलता रहता है, संकल्पों की गति बहुत फास्ट हो जाती है, उनको ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, चेंज करने की कोशिश करता है, थोड़ी देर शांत होता है, फिर वही संकल्प रिवाइज हो जाते हैं, परेशान कर देते हैं। अब तक मन की स्थिति मेरी कैसी है? अगर हम सब जानते हैं और बाबा ने हम सबको ये विधि बताई है कि इन विघ्नों को हल करने का साधन ही है एक बल और एक भरोसा। कई बार हम किसी देहधारियों के बल पर भरोसा रख लेते हैं कि अगर इसका सहारा लिया जाए, इसको साथ लिया जाए तो इस विघ्न का हल हो जाएगा। इस व्यक्ति का ये, इस पोजीशन वाले को अगर बताया जाए तो शायद इस विघ्न का हल मिल सकता है। कई बार लेना भी पड़ता है, लेकिन अगर संपूर्ण भरोसा एक बाबा में हो, एक बल पर संपूर्ण निश्चय हो कि बाबा हमारा सर्वशक्तिमान है, वो अलमाइटी है, ये विघ्न क्या बड़ी बात है, लेकिन वो सच्ची लगन चाहिए, सच्ची लगन वाला योग चाहिए, ऊपर वाला योग नहीं। योग करते हैं लेकिन सच्चा योग, सच्ची लगन में मग्न हो जाए आत्मा, बस एक के सिवाय और कोई भी याद न रहे, जिसको ही बाबा कहते हैं ये मग्न स्थिति है जिसके अंदर सब संकल्प समाप्त हो जाते हैं, अथवा ये कहें कि वो देह और देही, देहभान नष्ट हो जाता है, एकदम आत्मा लाइट माइट स्वरूप में एक सुंदर लाइट के घेरे में अपने आप को अनुभव करती है। अनुभव करते होंगे आप सब, यहाँ करना सेवा तो करेंगे ही, वो भी एक सेवा ही है, क्योंकि जब हम साइलेंस की गुफा में रहते हैं, शांति में रहते हैं और विशेष अभ्यास इस भ्रकुटी आसन पर बैठने का करते हैं, तो वो जो आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेज में स्थित हो जाती है, वो जैसे इस देह को छोड़ देती है, बड़े सुंदर अनुभव होने लगते हैं, एकदम लाइट माइट संपन्न स्टेज। उस स्टेज में विकर्म भी विनाश होते हैं, विघ्न भी समाप्त हो जाते हैं और मन एकदम स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, कहना मानता है, ऐसा नहीं कहेगा इधर गया उधर गया अब क्या करूं, उधर जिधर ले जाना चाहो आप उधर ले चला जाएगा। इसीलिए इस मन को भक्ति के अंदर अंतःवाहक कहा है, अंतर मन वाहन बन जाता है, जो अंदर की आत्मा की स्टेज है सूक्ष्म, मन के संकल्प ही स्पीड के रूप में, वाहन के रूप में सेवा कराते हैं। तो इसके लिए एक बात जरूर हर एक ने चेक की होगी, करना, कितने सालों से हम सुन रहे हैं मन जीते जगत जीत, तो हम सब ब्राह्मण आत्माएं कहां तक इस पर जीत प्राप्त कर चुकी हैं? गहरी चेकिंग है, ऐसे ऊपर से कहेंगे तो लगेगा हमने तो जीत पा ली है, लेकिन अगर 10 मिनट 15 मिनट या 3 मिनट ही ट्रैफिक कंट्रोल के गीत में ही चेक कर लो, कहां कहां जाता है, कितना भटकता है, कितना समय एकाग्र होता है, कई बार तो गीत पूरा हो जाता है उसके बाद ध्यान जाता है। इसलिए इस पर पहली चेकिंग में चेक करना कि अभी तक जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं या जब से बाबा की ये मुरलियां सुनी हैं, तब से लेकर मेरा इस बात पर कहां तक ध्यान गया है। शीतल संकल्प हैं, शांत संकल्प हैं, कोई भी प्रकार की इसके अंदर उत्तेजनाएं तो नहीं है, किसी से बदला लेने के संकल्प तो नहीं है, किसी के गुण अवगुण पर प्रभावित होने वाले संकल्प तो नहीं है, क्या है मन की स्पीड? दूसरी बात, बहुत सूक्ष्म में अपनी ओरिजिनल स्टेज को, आत्मा की जो ओरिजिनल स्टेज है प्योरिटी की, हमारी मूल धारणा हम सब ब्राह्मण आत्माओं की मन वचन और कर्म की पवित्रता शुद्धता, सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं है लेकिन सूक्ष्म में अहम भी समाप्त हो जाए, अहंकार का सूक्ष्म रूप भी समाप्त हो जाए, मैंपन समाप्त हो जाए, वो पवित्रता की स्टेज जिसमें आत्मा बिल्कुल निर्मल है, निर्माण है, निश्चिंत है, वो स्थिति पवित्रता की स्टेज मुझ आत्मा की कहां तक बनी है। क्योंकि इस स्टेज पर ही जब हम पहुंचेंगे तब सजाओं से मुक्त होंगे। अगर इम्प्यूरिटी या पवित्र संकल्प बार बार अटैक करते हैं, कई बार तो अभी तक कईयों को वासनाएं भी सताती हैं, विकार, पहला विकार ही परेशान करता है, जीतने का पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन युद्ध चलती है और युद्ध में बहुत मेहनत लगती है, सोचते हैं पता नहीं इस विकार पर कब जीत होगी, अंदर ही अंदर हैरान करता है, सताता है। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे व्यर्थ को भी समाप्त करने के लिए मन और बुद्धि को अच्छी तरह से बिजी करो, अच्छे चिंतन में, ज्ञान चिंतन में, कोई नवीनता में, कोई रचना के कार्य में मन को बिजी कर दो, जो इम्प्योर संकल्प भी समाप्त हो जाए। तो इस गहराई को, इस बात को सभी चेक करना कि जब से हम सब बाबा के बच्चे बने हैं, जन्म शरीर का विकारों से हुआ है, संग दोष में कई विकर्म भी हुए हैं, पाप भी हुए हैं, कर्म इंद्रियों से कई विकर्म भी हो गए हैं, लेकिन जब से हम बने बाबा के सच्चे पक्के ब्राह्मण कहलाया, तब से अब तक की स्टेज में पवित्रता की डिग्री कहें, परसेंटेज कहें, बढ़ी है या घट गई है, किस प्रकार के संकल्प चलते रहते हैं, देह के बारे में चिंतन, दैहिक बारे में ज्यादा ख्याल, दैहिक स्मृतियां जो देह के खिंचाव वाली हैं, क्या उस पर हम सबने विजय प्राप्त की है। परम पवित्र बाबा की याद, पतित पावन बाबा की याद हमारे संकल्पों को बहुत शुद्ध और पवित्र बना देती है। जो आज के बाबा के स्लोगन में था, नैनों से और चेहरे से पवित्रता की झलक, ये ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। इस पर्सनैलिटी पर हमारा ध्यान है कि हम सब अपनी दैहिक पर्सनैलिटी को बढ़ाने का ही पुरुषार्थ करते हैं, एक रूहानी पर्सनैलिटी डेवलप हो। हम ब्राह्मण आत्माएं बाबा के बच्चे इस पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान दें, ये बहुत बड़ी हमारी ऊंची धारणाएं हैं और इसी से ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी। जो आज बाबा ने कहा ना, दृष्टि से साक्षात्कार हो, वो दृष्टि से स्वयं का और बाबा का साक्षात्कार तभी करा सकेंगे जब इतनी आंतरिक प्योरिटी हम सब ने अपने मन में, वचन में, कर्म में, स्वप्नों में धारण की है। तो इसमें अलबेलापन ना आए, इसमें किसी को देखना नहीं, ये ईश्वरीय मर्यादा है। कई आत्माएं चलते चलते जब फेल हो जाती हैं, कोई संस्कार इमर्ज हो जाता है तो ब्राह्मण आत्माएं हिल जाती हैं, सोचती हैं ये इतना पुराना, इतने समय से ज्ञान में चलने वाला, महारथी की लिस्ट में आया हुआ, इसने भी इस विकार से हार खा ली, पता नहीं मेरा क्या होगा, दिल शिकस्त हो जाते, निराश हो जाते हैं। और बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे हर आत्मा का अपना हिसाब किताब है, हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, तुम अपने अच्छे से अच्छे पार्ट पर ध्यान दो, अपने संस्कारों पर ध्यान दो। महारथी वो नहीं है जो परवश होकर के कोई गलत काम कर रहा है, इसलिए वो महारथी भले सेवा में है, बड़ों की नजरों में भी है, लेकिन अगर वो कोई भी विकार के अधीन होकर के कर्म कर रहा है तो उसको बाबा अपनी लिस्ट से बाहर कर देता है, उसकी बाबा की लिस्ट में वो नहीं है। इसलिए कभी भी उसको देख करके छोटी दिल संकल्पों को अपने उत्तेजित नहीं करना, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, बाबा की श्रीमत ये कहती है, करता ये क्या है, इस प्रकार के संकल्प बहुत नेगेटिव संकल्प हैं। हम बच्चों को बाबा ने इन संकल्पों से भी मुक्त किया है, जो करेगा वो पाएगा, इसलिए ऐसे संकल्प रचने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई की कंप्लेन लिखने की जरूरत नहीं है। कई सेंटर से ऐसे ऐसे पत्र आते हैं, बाबा ने मुझे सेवा दी है इसलिए बता रहा हूं, क्लास के सभी स्टूडेंट साइन करके भेज देते हैं, या कोई नकली साइन करता होगा वो भी पता नहीं चलता है, अपने टीचर के प्रति अपने बड़ों के प्रति ऐसे ऐसे पत्र लिख देंगे कि वो ऐसे करते हैं, वैसे होता है, यहाँ ऐसे चलता है, और सबके साइन होती है। बाबा तो ऐसे वेस्ट पेपर्स बॉक्स में ऐसे पत्रों को डाल देता है, क्यों किसी का चिंतन आप कर रहे हो, क्यों अपने संकल्पों को दूषित कर रहे हो, क्योंकि दूसरों पर नजर अगर जा रही है तो पहले बाबा की बात याद रखो कि अगर एक अंगुली हम दूसरे के ऊपर करते हैं तो ये तीन उंगुलियां अपनी तरफ इशारा करती हैं, इसलिए किसी को भी देखने की संगम पर जरूरत नहीं है। हम अपनी प्योरिटी की स्टेज को कहां तक बनाया है और कहां तक इसमें पास हुए हैं, क्योंकि आज की मुरली के अंदर अंडरलाइन थी वृत्ति से पवित्र वायुमंडल बनता है। अगर हमारी वृत्ति में इम्प्योरिटी नहीं है, मैं समझता हूं मैं बहुत अच्छा हूं, प्योर हूं, बाबा का शुद्ध पवित्र बच्चा हूं, तो क्या हमारे उस पवित्र वृत्तियों से वायुमंडल परिवर्तित हो रहा है, या हम नेगेटिव बातों को नोट करके आपस में उसकी चर्चा करके एक इम्प्योर वातावरण क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत कर्मों की गहन गति है, गहन फिलॉसफी है, इस पर हरेक को बहुत अंडरलाइन करना है कि हम सब बाबा के पवित्र बच्चे, हम बाबा के बच्चों को बहुत बड़ी सेवा मिली है, बहुत बड़ी ड्यूटी है विश्व परिवर्तन की, और उस विश्व परिवर्तन का आधार केवल हमारी मानसिक आंतरिक पवित्रता है, उसी से पवित्रता के आधार से पवित्र दुनिया नई दुनिया बन रही है। इसलिए मैं बनूं और अपने स्थान के अपने साथियों के वातावरण को अपनी वृत्तियों से परिवर्तित करूं, क्योंकि इस बार की विशेष अंडरलाइन मुरली में थी 24 तारीख को जब बाबा विदेशी बच्चों से मिल रहे थे कि बच्चे अब वृत्तियों से वृत्तियों को चेंज करने का परिवर्तन करने का समय है, कह करके नहीं, हमारी आंतरिक वृत्तियां इतनी शक्तिशाली हो जाएं जो वातावरण को चेंज कर सके। हम अपने शुद्ध संकल्पों में शुभ भावनाएं शुभ चिंतन की वृत्तियां जितनी हमारी बनती जाएंगी वातावरण परिवर्तित हो जाएगा। अगर कोई कमजोर होगा अभी संगठन के बीच में तो वो भी एक न एक दिन रियलाइज करेगा, महसूस करेगा ये मेरी कमी है। बाबा सबका शिक्षक है, सबको पढ़ा रहा है, सबको सिखा रहा है, और जो मुरली पर ध्यान दे रहे हैं पढ़ रहे हैं मैं समझता हूं वो जरूर रियलाइज कर रहे होंगे, करेंगे करेंगे ही परिवर्तन होंगे, और आज नहीं तो कल बाबा और समय उन्हें बदलेगा। मैं अपने हाथ में किसी को बदलने की जवाबदारी न ले लूं, ठीक है। और तीसरी बात, अपनी एक तीसरी स्टेज को चेक करना, सुख स्वरूप आनंदित स्थिति मेरी रहती है, सुख स्वरूप आनंदित स्थिति, बहुत सी मुरलियां पिछले सीजन में बाबा ने चलाई हैं, खुशनुमा, खुश मिजाज, खुश किस्मत मेरे बच्चे, चेहरे से वो खुशी दिखाई दे, आप जैसा खुश नसीब दुनिया के अंदर कोई नहीं है। उस खुश नसीबी की निशानी सुख स्वरूप स्थिति, आनंदित स्थिति रहती है। आनंदित स्थिति की दूसरी निशानी है सब प्रकार के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, वो प्रसन्न चित्त स्थिति है। वो दुआओं को लेने और दुआओं को देने वाली स्थिति है। तो कहां तक मैं आत्मा सुख स्वरूप आनंदित स्थिति में रहती हूं, बाबा जैसा मुझे देखता है, जानता है, क्योंकि दुनिया के अंदर दुख के पहाड़ गिर रहे हैं, दुख बढ़ते जा रहे हैं, भयानक से भयानक सीन आ रही हैं, प्रकृति के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, विकारों के द्वारा, एकदम दुख की घटनाएं। बाबा कहते थे बच्चे ऐसा समय आएगा जो दुख के पहाड़ गिरेंगे। तो अभी लग रहा है कि दुनिया में दुख के पहाड़ गिर रहे हैं, और बाबा ने अपने सब बच्चों को दुख की दुनिया से निकाल करके संगम की दुनिया में बिठाया है, सुख की दुनिया में ले जा रहा है। तो सभी चेक करना कि मुझे कोई भी दुख की लहर तो नहीं आती है, न दुख देना और न दुख लेना, किसी भी प्रकार की कोई भी बात मुझे दुखी न करे, इतनी सुख स्वरूप स्थिति में रहूं और सबको सुख स्वरूप स्थिति से देखूं। कितनी सब खुश नसीब आत्माएं हैं, भगवान की पालना डायरेक्ट इन सभी बच्चों को मिल रही है। आज कितनी महिमा की बाबा ने कि धर्म पिताएं, जगत गुरु, दुनिया की आत्माएं क्या हैं तुम्हारे आगे, तुमको तो माता पिता की डायरेक्ट पालना मिल रही है, वो तुमको पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, पालना दे रहा है, जिसके लिए लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि इनको भगवान मिलेगा, इनको भगवान पढ़ाएगा। हम सब वो भाग्यशाली आत्माएं हैं, उस सुख स्वरूप का, उस आनंदित स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करें। दुख की दुनिया गई कि गई, हमारे लिए ही नहीं। तो सभी चेक करना, दुखी होकर के कभी भी किसी के दुख को देख करके मैं दुखी तो नहीं हो जाता। कहीं कहते हैं इतना रहम दिल तो होंगे ना, ये बेचारा दुखी हो रहा है तो मेरे को दुख की लहर नहीं आएगी क्या? बाबा कहता अगर तुम उस दुखी के दुख को देख करके दुखी हो गए तो तुम उसको सुख स्वरूप कब बनाओगे, तुम उसको सुखी कैसे बना पाओगे? इसलिए अपनी सुख स्वरूप स्थिति में रह करके उसको सुख के वाइब्रेशन दे करके उसके दुख को हर लो, ये है सुख स्वरूप स्थिति। तो सभी देखना अपने आप को कि मैं आत्मा सुख स्वरूप आनंदित स्थिति में रहती हूं। और चौथी बात जिस पर विशेष बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, स्वयं से संतुष्ट। मैं संतुष्ट हूं ऐसा नहीं सोचो, लेकिन जो संतुष्ट मणि आत्माएं हैं उनकी वाइब्रेशन भी लोगों को संतुष्ट कर देते हैं। संतुष्टता से के खजाने से मैं आत्मा कहां तक संपन्न हूं, मेरी संतुष्टता के वाइब्रेशन से दूसरी आत्माएं भी संतुष्ट हो जाएं। क्या मैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हूं, अपनी निजी धारणाओं से संतुष्ट हूं, इतनी प्राप्तियां मैंने कर ली है संगम युग पर, बाबा जो कुछ दे रहा है वो सब कुछ प्राप्त करके मैं आत्मा अपने आप को संतुष्ट मणि अनुभव करती हूं। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, कोई अप्राप्त शक्ति नहीं मुझ ब्राह्मण आत्मा के खजाने में है। इतना नशा सबको चेक करना, अप्राप्ति है और कहे मैं संतुष्ट हूं, उसको संतुष्ट नहीं कहते हैं। तो संतुष्टता की सब्जेक्ट में चेक करना कि मैं आत्मा कहां तक संतुष्ट मणि बनी हूं, सुख स्वरूप कहाँ हूँ, कहाँ तक हूँ, पवित्रता की स्टेज कहाँ तक आई है, मन की स्टेज क्या है, और पांचवी एक बहुत गहरी बात जो हम सबको रोज चेक करनी चाहिए, क्योंकि हम सब योग अभ्यास करते हैं, वो योग बिल्कुल सरल सहज नेचुरल हो गया है या अभी तक योग लगाने में बहुत मेहनत लगती है, कितना समय लग जाता है जो योग में स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, एक बाबा में तल्लीन हो जाए, मग्न हो जाए, जिसको बाबा इस समय कह रहे हैं ज्वाला स्वरूप योग। ज्वाला स्वरूप माना यही नहीं है कि हमारे भी कर्म दग्ध हो गए, लेकिन उस ज्वाला की सकाश से अन्य आत्माओं को शक्ति मिले, हमारी धारणाओं से, हमारी शक्तियों से, हमारे योग के वाइब्रेशन से, मनसा से अन्य आत्माओं को प्राप्तियां हों, ऐसा पावरफुल योग। तो योग के ऊपर विशेष अंडरलाइन, क्योंकि योग से ही विकर्मों को हम दग्ध कर सकते हैं, और अगर ज्यादा विकर्म होते जा रहे हैं तो योग नहीं लगता है, योग में मेहनत तो नहीं लगती है जिनसे कोई न कोई ऐसे गलत कर्म होते हैं। इसलिए हम सब इस समय किस राही, किस मंजिल के राही हैं, हम सब की मंजिल है कर्मातीत संपन्न और संपूर्ण बनना है, ये मंजिल है हम सब की, और उसके लिए इस समय कर्मेंद्रिय जीत विक्रमाजीत बन करके ही हम कर्मातीत बन सकेंगे। तो सभी अपने आप को जरूर चेक करना, बाबा के घर में आप सबको सेवा का चांस मिला है, खूब सेवाएं करो, दिल से करो, खूब भाग्य बना लो, भगवान ने अच्छा आपके लिए भाग्य बनाने के लिए इतना बड़ा यज्ञ रच दिया है, जिस प्रकार की सेवा मिले, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत खुशी से प्यार से दिल से मुस्कुराते हुए करेंगे तो ब्राह्मण आने वाली आत्माओं को खुशी होगी और आपको दुआएं देंगे, दुआओं का स्टॉक फुल हो जाएगा। लेकिन सेवा के साथ साथ ये 7-8 दिन का जो बहुत अच्छा समय आपको मिला है, बहुत एकांतवासी 3 चीजों का ध्यान रखना, भले संगठन बड़ा होगा 10-15 हजार 16 हजार का संगठन होगा, लेकिन सबके संगठन के बीच में रहते हुए मैं एकांतवासी हूं, एक के अंत में खोया हुआ हूं, भीड़ में नहीं जाना, भीड़ में जाना माना ऐसे नहीं भीड़ में आना ही नहीं, क्लास में नहीं आना, लेकिन इस भीड़ में रहते हुए एक के अंत में खो जाना, एकांत का अनुभव करना, पहला टेंशन एकांतवासी, एक बाबा के याद में उसकी अंत में रहना है, और दूसरा ध्यान रखना कि मुझे मुख और मन पर बहुत कंट्रोल रखना है, जितना आवश्यक है उतना ही मुख से बोलें, और नहीं आवश्यक है तो चुप शांत रहें, मन का भी मौन हो जाए, मन में भी उथल पुथल न चले, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो कर रहा है सब ठीक हो रहा है, मन का मौन। तो एकांतवासी और मन के मौन से, और तीसरी बात है जो भी समय मिले स्वाध्याय, स्वाध्याय समझते हो, स्वाध्याय माना सिर्फ पठन पाठन नहीं, लेकिन स्वयं स्वयं को पढ़ाना, अध्ययन, स्वयं स्वयं को अध्ययन कराना, मैं कौन हूं, मैं किस लिए बाबा का बना हूं, बाबा ने मुझे क्यों ये गोल्डन चांस दिया है, अपने आप से बातें करना, स्वाध्याय करना। तो अगर इन 3 बातों पर ध्यान देंगे, एकांतवासी रहेंगे, मन और मुख पर ध्यान देकर कंट्रोल रखकर मौन रखेंगे, और स्वाध्याय करते रहेंगे, पर चिंतन और पर दर्शन को फुल स्टॉप, कहीं भी नहीं करना, ऐसे नहीं 10 लोग मिल गए, 5-6 सब जोन मिले हैं, आपके जोन में क्या हो रहा, मेरे जोन में क्या हो रहा, यहाँ क्या हो रहा, वहां क्या हो रहा, इस पर चर्चा में नहीं जाना, नहीं तो टाइम वेस्ट, आपकी एनर्जी वेस्ट, और यहाँ आए हैं उसका पूरा फायदा नहीं ले पाएंगे। तो मैं समझता हूँ आपकी ये दिन बाबा के मिलन के दिन आपने जो गोल्डन चांस लिया है, इसमें खूब भरपूर हो करके अपने आप को बाप समान बना करके वरदानों से झोली भर करके यहाँ से जाएंगे। ओम शांति।